Omnisciente. रूप तीन, सभी अपने को संगम योगी पुरुषोत्तम आत्माएं अनुभव करते हो। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम पुरुष, तो सभी साधारण नहीं हो, पुरुषोत्तम हो, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सदा ऊंचा दिखाते हैं, मुख वंशावली दिखाते हैं ना, तो ब्राह्मण बन गए अर्थात श्रेष्ठ बन गए। साधारण पुरुष, आप पुरुषोत्तम आत्माओं की पूजा करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात पवित्र बन गए, तो पवित्रता की ही पूजा होती है। साधारण आत्मा भी पवित्रता को धारण करती है तो क्या कहलाती है? पूजनीय कहलाती है, तो महान आत्मा कहलाती है। तो आप सब पवित्र आत्माएं हो ना, कि मिक्स्ड आत्मा हो, थोड़ी थोड़ी अपवित्रता, थोड़ी थोड़ी पवित्रता, नहीं पवित्र आत्माएं बन गया, तो पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। तो ये नशा रहता है कि हम पुजारी से पूज्य बन गए। ब्राह्मणों की पवित्रता का गायन है, कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से कराएंगे, अशुभ कार्य ब्राह्मणों से नहीं कराएंगे। अशुभ कार्य ब्राह्मण करेंगे तो कहेंगे ये नाम का ब्राह्मण है, काम का नहीं। तो नामधारी ब्राह्मण हो या कामधारी हो, नामधारी ब्राह्मण तो बहुत है, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले हो, साधारण आत्मा नहीं हो, विशेष आत्मा हो, ये खुशी है ना। कल साधारण थे, आज विशेष बन गए, तो विशेष आत्मा समझने से जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, और जैसी स्थिति होगी वैसे कर्म होंगे। चेक करो, जब स्थिति कमजोर होती है तो कर्म कैसे होते हैं? कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी, और स्थिति शक्तिशाली होंगी तो कर्म भी शक्तिशाली होंगे। तो स्थिति का आधार क्या हुआ? स्मृति। स्मृति खुशी की है तो स्थिति भी खुश, कर्म भी खुशी खुशी से करेंगे। तो फाउंडेशन है स्मृति, तो बाप ने स्मृति बदल ली, साधारण से विशेष आत्मा बने तो स्मृति चेंज हो गई। चाहे कर्म साधारण हो, लेकिन साधारण कर्म में भी विशेषता हो। तो क्या कहा? सभी अपने को संगम योगी पुरुषोत्तम आत्माएं अनुभव करते हो। आज की मुरली का टाइटल भी वही है ना, तुम्हें नशा रहे, कौन हो? संगम योगी ब्राह्मण है। तो केवल इतना भी याद रहे कि हम संगम योगी है, तो बाबा ने कहा ओ सौभाग्य, संगम योगी पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम पुरुष, उत्तम नारी आत्माएं अनुभव करते हो। सुनना सुनाना नहीं, अनुभव करना, और अनुभव के रत्न को पाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सागर में डूबना पड़ेगा। ज्ञान सागर की गहराई में जब तक नहीं जाते तब तक रत्न नहीं मिलेंगे, रत्न ऊपर ऊपर नहीं होते। एक कविता है ना, मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो, बहुत प्रसिद्ध कविता है। मैं तो गोताखोर हूँ, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। मैं पहला खोजा नहीं अगम भव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने इसको था, पर मुझ में उनमें भेद यही, मैं उस अनमोल मोती का आशिक हूँ, जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी। तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। तो जिसे अनमोल रत्न चाहिए, कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, ऐसी कविता है। तो जिन्हें रत्न चाहिए, तो अनुभव एक रत्न है। अनुभव इतनी सस्ती चीज नहीं है जो किनारे पे मिल जाए। उठा लिया भर भर के खुद जाके लाना पड़ेगा। तो अपने को संगम युगी पुरुषोत्तम आत्माएं अनुभव करते हो। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम पुरुष, उत्तम उत्तम एक है, मध्यम एक है, कनिष्ठ तो मध्यम भी नहीं है, उत्तम है। तो सभी साधारण नहीं हो, पुरुषोत्तम हो। बाबा ने कहा है तुम साधारण नहीं हो, ना तुम्हारे संकल्प, ना तुम्हारे बोल, ना तुम्हारे कर्म, ना तुम्हारी दृष्टि, ना तुम्हारी वृत्ति, ना तुम्हारे वाइब्रेशंस, चलन व्यवहार सब कुछ महान। महान बनने का महत्व होता है, टीचर्स के लिए कहा है ना आगे आने वाले, क्योंकि तुम्हारे पास साधन प्राप्त है तुम्हें महान बनने के, संघ है, वातावरण है, शुद्ध अन्न है, सेवा है, संबंध संपर्क है, इन पांच साधनों से तुम महान बन सकते हो, मनसा वाचा कर्मणा और संपर्क में। ये वाला ये संडे की मुरली है, उसने बाबा ने कहा है कि टीचर्स जो बहने हैं उनको साधन प्राप्त है महान बनने के। सबसे पहला साधन है संघ, सेंटर के लिए बात है ये, और ये तो सबसे बड़ा सेंटर है, सेंटरों का सेंटर, महासेंटर। संघ प्राप्त है, वातावरण प्राप्त है, शुद्ध भोजन प्राप्त है, सेवा, सेवा से महानता, सेवा ही साधन है महान बनने का, कितनी बड़ी बात है। और संबंध संपर्क भी साधन है महान बनने का। तो जो महान है उनका महत्व है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ, ब्राह्मण शब्द का ही अर्थ है जो श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों को सदा ऊंचा दिखाते हैं इस समाज में, सदैव ब्राह्मणों को ऊंचा समझा गया है। राजा तक अपनी सीट छोड़कर ब्राह्मणों के चरणों में गिरते हैं, जो प्रशासन में है उनसे भी ऊंचे है वो, मुख वंशावली दिखाते हैं। तो ब्राह्मण बन गए अर्थात श्रेष्ठ बन गए। साधारण पुरुष आप पुरुषोत्तम आत्माओं की पूजा करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात पवित्र बन गए। तो पवित्रता की ही पूजा होती है, पवित्रता ही की ही पूजा होती है, पवित्रता ही पूज्य है। साधारण आत्मा भी पवित्रता को धारण करती है तो महान आत्मा कहलाती है। संसार की कोई आत्मा ब्रह्मचर्य व्रत को अगर धारण कर ले तो संसार उसे महान निगाह से देखता है, श्रेष्ठ समझता है, केवल ब्रह्मचर्य धारण करने वाले। संपूर्ण पवित्रता नहीं धारण की, केवल ब्रह्मचर्य धारण किया। तो आप सब कौन हो? बाबा कहते पुरुषोत्तम आत्माओं की संसार की आत्माएं पूजा करती है, जो साधारण आत्मा है। बाप को भी नाज है, पूजनीय है और गायन योग्य है। किस पे नाज है? 8 पे नहीं, 108 पे नहीं, 16,000 के भी आखिरी जो मन का है, लास्ट जो मन का है, उसके ऊपर भी बाप दादा को नाज है। जो तुम्हारे दर्शन के लिए भक्त भी प्यासे हैं, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं हम। हमारे दर्शनों के बाप भी तुम्हारे दर्शन के लिए परम धाम से आते थे, अब तक तुम दर्शनों के लिए यहाँ वहां भटकते थे।
देवता 16,000 ही हमें 33 करोड़।
साधारण आत्मा की पवित्रता को धारण करती है तो महान आत्मा कहलाती है। आप सब पवित्र आत्माएं हो ना, कि मिक्स्ड आत्मा हो? मिक्स पवित्रता, थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी अपवित्रता, परसेंटेज फिर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, 50-50, 50-60, 30-70, अलग अलग कॉम्बिनेशन। एट्टी ट्वेंटी नाइन्टी टेन कोई कोई थोड़ी थोड़ी अपवित्रता थोड़ी थोड़ी पवित्रता नहीं, पवित्र आत्मा बन गए। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है, पवित्रता ही महानता है। सुख शांति उसके बच्चे है, उसकी गोद में खेलते हैं सुख और उसका भाई उसकी बहन शांति, दोनों भाई बहन अपनी माँ की गोद में होते हैं। पवित्रता ही पूज्य है। तो ये नशा रहता है कि हम पुजारी से पूज्य बन गए। नशा चढ़ने के लिए क्या चाहिए? डोज थोड़ा ज्यादा चाहिए, ऐसे ही नशा थोड़ी चढ़ता है। कोई थोड़ा सा पी ले उसको नशा कहाँ चढ़ता है? कितना पीना पड़ेगा देवेंद्र भाई नशा चढ़ने के लिए? नशा चढ़ने के लिए डोज थोड़ा ज्यादा चाहिए। ऐसे थोड़ा बहुत पी लिया तो नशा नहीं चढ़ता है। अभी एक दो दिन पहले पेशेंट एडमिट हुआ था, भांग, हाँ भांग पी ली थी, बाकी सब ठीक था। तो हमने कहा कुछ नहीं करो, चार पांच घंटे में जाग जाएगा। पांच बजे आया, ग्यारह बजे जाग गया, बाद में उपद्रव। तब तक शांति। तो नशा चढ़ने के लिए ज्यादा डोज चाहिए थोड़ा। तो ज्ञान का भी थोड़ा ज्यादा डोज लेना पड़ेगा। कम डोज दे रहे हैं हम लोग, डोज को बढ़ाओ बस। एक घंटा पर्याप्त नहीं है, ज्यादा टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा, इंटरवल भी बढ़ाना पड़ेगा। नशा जैसे कम होता है दो घंटे में वापस दूसरा इंजेक्शन, एवरी टू आवरली इंजेक्शन लगाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए। एक सुबह इंजेक्शन लगाया और सीधा शाम को ऐसे से कहा नशा चढ़ेगा। फिर शाम का डोज भी थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, वो भी कम दे रहे। सुबह का तो पावरफुल डोज दे दिया, शाम का हल्का फुल्का दे दिया, तो कहां से नशा चढ़ेगा? तो बीच बीच में डोसेस देते रहना है। ब्राह्मणों की पवित्रता का गायन है, महानता का गायन है, पवित्रता का गायन है, श्रेष्ठता का गायन है, शुद्धता का गायन है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो ब्राह्मणों से कराएंगे। सारे ही शुभ कार्यों के लिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, अशुभ कार्य ब्राह्मणों से नहीं कराएंगे। अशुभ कार्य के लिए किसको बुलाया जाता है? झंडाल। अशुभ कार्य ब्राह्मण करे तो कहेंगे ये नाम का ब्राह्मण है, काम का नहीं। संस्कार है ना, वो भी एक। तो आप नामधारी हो या कामधारी हो, नामधारी ब्राह्मण तो बहुत है। केवल नाम से, जन्म से ब्राह्मण, परिवार में जन्म लिया इसके लिए ब्राह्मण, वैसे तो संसार में बहुत है। लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले हो, साधारण आत्मा नहीं हो। बार 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 बाबा यही चीज हैमर करता है, तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा है, तुम महान आत्मा हो, तुम विशेष आत्मा हो, तुम विघ्न विनाशक आत्मा हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हो। साधारण आत्मा नहीं हो, विशेष आत्मा हो। तो इस बात को अपने अंदर थोड़ा हैमर करके अंदर डालना है, कूट कूट के भरना है। ये खुशी है ना, कल साधारण थे और आज विशेष बन गए। तो विशेष आत्मा समझने से जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, और जैसी स्थिति होगी वैसे कर्म। तो कर्म का आधार भी स्मृति है। अगर कर्म कमजोर हो रहे हैं तो इसका मतलब स्मृति में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सबसे पहले स्मृति को चेक करना है, संकल्पों को चेक करना है, स्मृति को श्रेष्ठ बनाना है। और स्मृति को श्रेष्ठ बनाने का आधार है क्या? संकल्प समान। कल कहा था ना वरदान में, सदैव क्या करो, मुरली के राज का साज सदैव बजाते रहो तो माया भी सदा के लिए क्या हो जाएगी, सरेंडर हो जाएगी। मुरलिया बहुत सुन ली, कल बाबा ने कहा है मुरलिया बहुत सुन ली, अभी मुरलीधर बन जाओ तो माया सरेंडर हो जाएगी। बहुत मुरलिया सुन ली, अभी कुछ और करो, सुन तो बहुत लिया है, याद कुछ नहीं है। कहाँ चला जाता है ये, अंदर ही है पर मुरलिया बहुत सुन ली। कृष्ण से कहता है ना परशुराम, महाभारत में सीन है ना, जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है सांदीपानी के आश्रम में कृष्ण और बलराम की, तो वहां पे परशुराम आता है तो कहता है आपका कैसे आना हुआ। वो कहता है तुमने मुझे बुलाया, मैं नहीं आया हूँ, तुमने ही मुझे बुलाया है। बहुत सुंदर वाक्य कहता है कि मुरलिया बहुत बजा ली, लीलाएं बहुत कर ली, माखन बहुत खा लिया, रास लीलाएं बहुत कर लिया, वो करो जो करने आए हो। परशुराम ने कृष्ण को कहा संभालो अपना ये सुदर्शन और पहले उधर जाओ मथुरा में जरासंघ को मारो। तो कितना सुंदर महावाक्य है वो, माखन बहुत खा लिया, लीलाएं बहुत कर ली, रास बहुत कर लिया, मुरलिया बहुत बजा ली, अब वो करो जो करने आए थे। तो लड़ा तो नहीं देता है, ये लो संभालो अपना सुदर्शन। तो कल बाबा ने भी ऐसा ही कहा, मुरलिया तो बहुत सुन ली, अब मुरलीधर बनकर, मुरलीधर बन जाओ तो माया सरेंडर हो जाएगी। मुरली के राज का साज सदैव बजाते रहो तो माया सरेंडर हो जाएगी। कारण को मुरली से समाप्त करो, कारण समाप्त तो माया समाप्त, लास्ट लाइन, कारण समाप्त तो माया समाप्त। तो विशेष आत्मा समझने से जैसी स्मृति, तो हमारी स्मृति शक्तिशाली होने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक चाहिए। किसी के पास शुद्ध संकल्प नहीं है संसार में, जो नकी पे घूमते रहते हैं, किसी को पूछो क्या सोच रहे हैं, किसी के पास है महान संकल्पों का स्टॉक, क्या सोच रहे हैं, चिंता है घर परिवार गृहस्थ की। गॉसिप
पकड़ गया,
बड़े बड़े पोथी पुराण रामायण महाभारत लिखी जा सकती है अगर दो माताएं बैठ गई तो। किसी के पास इस संसार में शुद्ध संकल्पों का अभाव है, अकाल पड़ा हुआ है संसार में महान संकल्पों का, और हमारे पास खजाना है, बाढ़ आ रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, परंतु हम चुप कर दुबक कर बैठे हुए अंदर, अपने आप को सुरक्षित कर भीगना चाहिए ना कि नहीं। परमात्मा प्रेम की बाढ़ जिसमें तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, विकारों के गांव, जमीन, सब कुछ। तो चेक करो किसको शक्तिशाली बनाना है, स्मृति को। स्मृति को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करेंगे, स्मृति अर्थात रिमेम्बरेंस, स्मृति अर्थात मनन चिंतन, स्मृति अर्थात याद करना, कुछ कुछ बातें हमारी बुद्धि में परमानेंट सिलेक्टेड हो। जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको अगर वर्ड सीखना है, वाक्य का कंस्ट्रक्शन अगर सीखना है, तो पहले उसे ABCD सीखना पड़ेगा। वो अगर कहे कि ए के बाद बी क्यों आता है, बी नहीं आना चाहिए, वो उसी में संघर्ष करे, उसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि ये फर्स्ट है, ये तो तुमको करना ही है, इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप तो याद ही करना होता है, और वो और हमारे अंदर वो एक रहे, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इतना तो मैंने जान लिया, और कुछ जानना बाकी है, आज की मुरली से क्या जानू नया, कुछ है उसमें नया कि वही वही चल रहा है रिपीटेड। हर मुरली में कुछ ना कुछ नया है, पर हम उसको पकड़ क्यों नहीं पा रहे? जैसे छोटा बच्चा होता ना, कल ही हम लोग उधर अनादरा में थे, तो एक सूर्यास्त हो गया था, कि इतना छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के साथ आया। वो पिताजी कहते हैं सूरज तो चला गया, वो बोला कहाँ गया? तो पिताजी ने कहा अपने घर गया। अब ये मत पूछना घर कहाँ है। घर चला गया वो। वो घर कहाँ है? क्योंकि उसमें एक क्यूरियोसिटी होती है। वो क्यूरियोसिटी हमने कहाँ, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, उसमें वो क्यूरियोसिटी समाप्त हो जाती है। उसको लगता है सब साधारण है। ज्ञान की बात चल रही है। ज्ञान का बचपन जो होता था, तब हमें बहुत क्यूरियोसिटी थी हर बात को जानने में। कोई भी नई चीज अगर मुरली में आ जाती थी तो हम उसको ढूंढते थे, जानने की कोशिश करते थे ये क्या। अगर दिलवाड़ा मंदिर आ जाए तो दिलवाड़ा क्या है, कहाँ है, हम भी जाके देखेंगे, ये सब संकल्प आते थे। अभी तो दिलवाड़ा आया और गया, इधर से और इधर से, कुछ उसका असर ही नहीं पड़ रहा। तुम्हें बाप समान बनना है, सुना हो गया। तुम्हें दैवी गुण धारण करना है, सुनना है, सोया हो गया। योगी बनना है, पवित्र बनना है, सुना हो गया। देह सही देह के सब धर्म छोड़ो, गया इधर से। जो चीज बार बार सुनी जाती है उसका असर होना समाप्त हो जाता है। उसको नए ढंग से, नई रीति से, नए रूप से जानना, समझना, सुनना, पाना, तो ही उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं तो एक ही मुरली अगर चलती रहे तो मोनोटोनस, उसमें रमणीकता नहीं होती, गुम हो जाती है। उसी रीति से हम पढ़ रहे, पढ़ना भी अगर उसी रीति से चालू है तो वो भी मोनोटोनस हो जाता है। जरूरी नहीं कि हम वहीं से चालू करें, वरदान स्लोगन से चालू करो, वो बहुत शक्तिशाली होता है। स्लोगन वरदान शक्तिशाली होता है। कभी वहां से चालू करो, कभी यहाँ से चालू करो, कभी वहां। बाबा ने कहा है ना संडे, एक एक शब्द लो, उसकी गहराई में जाओ। अपने आप को रोज एक टॉपिक दो और सोचने के लिए टॉपिक दो। शुद्ध संकल्प का स्टॉक तुम्हारे पास हो, मुरलियां आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। पूरा खाया ही नहीं अभी भोजन, तो दूसरे दिन आ गया। कोई दूसरे पहले दिन का कोई मुरली पढ़ता है क्या? चिमन भाई आज आ रही है, कल की मुरली कोई आज पुरानी होगी। इच्छा नहीं होती, नहीं चाहिए, नहीं। अरे कल की पढ़ी क्या? कल का नहीं चाहिए, आज की कहाँ है? कई लोग बड़े बेचैन रहते हैं मुरली के लिए, आज की मुरली, आज की मुरली, आज की मुरली, आज की मुरली। नहीं मिल गई तो आप 10 दिन की नहीं चाहिए, आज की चाहिए। और आज की भी उसका नवीनता तब तक रहती है, एक बार पढ़ लिया कि पुरानी हो गई फिर। बस पढ़ लिया, घर में रखी हुई है कई लोगों की मुरलियां, कोई पढ़ता है उसको देखता भी नहीं। जो डायरी आज तक लिखी है मुरली क्लास में बैठकर, कोई उसको निकालता भी, देखता भी है कुछ लिखा था हमने? नेवर। बांट दिया, कोई कोई बेच भी देते हैं रद्दी में, नहीं पढ़ता है। तो शायद हमारी टेक्निक कहीं ना कहीं गलत हो रही है फिर ये लिखने की, क्योंकि कुछ तो गलत हो रहा है। इतना हमको ध्यान में आना चाहिए कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, क्योंकि हम वो कर तो रहे हैं परंतु वो बुद्धि में नहीं है। फिर भी हमने बहुत सारी ट्राई किया, ये किया, कभी कभी पॉइंट्स लिखे मुरली चलते चलते, हमने बहुत सारी पॉइंट्स लिखी, पर बाद में पता चला वो पॉइंट्स का कुछ असर ही नहीं पड़ा है, यहाँ वो गई नहीं है। सबकॉन्शियस ने उसे स्वीकार नहीं कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। क्यों? बुद्धि कमजोर हो रही है, क्या हो रहा है? कमजोर हो रही है या टेक्निक रॉन्ग है? टेक्निक रॉन्ग है शायद, नई टेक्निक्स को ढूंढना पड़ेगा। क्या ऐसी टेक्निक नहीं निकाले कि जिससे वो हमारे विचारों का एक भाग बन जाए, विचार और वो उसमें घुल मिल जाए, वो दोनों एक हो जाए, वो हमारे चिंतन का भाग बन जाए। जैसे कहा ना, जो प्रैक्टिकल लाइफ की बातें वो भूलती नहीं, संडे में बाबा ने कहा है, जैसे पास्ट की बातें तुम्हें कभी भूलती नहीं, वैसे बाप टीचर सदगुरु वो मिल गया तुमको, ये जो भाग्य है ये भूलता नहीं, अगर वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए तो। अभी भूल रहा है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ की नहीं बात हुई नहीं हो, तो वो ज्ञान की पॉइंट प्रैक्टिकल हो जाए। जैसे हमको हमारा नाम नहीं भूलता, लौकिक गांव नहीं भूलता, लौकिक घर का एड्रेस नहीं भूलता, टेलीफोन नंबर किसी के नहीं भूलते, सब याद रहते हैं।
खुद का तो रहता ही
नहीं, बाकी का भी सबका याद रहता है। बरबर है मंजूबन। तो बाबा कहते चेक करो, जब स्थिति कमजोर होती है तो कर्म ऐसे होते हैं। तो कर्म अगर कमजोर हो रहे हैं तो जरूर हमारी स्मृति कमजोर है। उस स्मृति को, उस मेमोरी को, उस याददाश्त को शक्तिशाली बनाओ। कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी और स्थिति शक्तिशाली तो कर्म भी शक्तिशाली। तो स्थिति का आधार स्मृति, स्मृति खुशी की है तो स्थिति भी खुश, कर्म भी खुशी खुशी से करेंगे। फाउंडेशन है स्मृति, तो बाप ने स्मृति बदल दी। साधारण से विशेष आत्मा बने तो स्मृति चेंज हो गई। चाहे कर्म साधारण हो लेकिन साधारण कर्म में भी विशेषता हो। बाबा ने उदाहरण दिया है, देखो मानो खाना बना रहे हो तो ये साधारण कर्म है, सब करते हैं, लेकिन आपका खाना बनाना और दूसरों के खाना बनाने में फर्क होगा ना। क्यों? समान में रह के बनाते हैं और याद में बनाते हैं और बाबा को खिलाते हैं और भगवान के लिए बनाते हैं। दूसरे के लिए जब बनाया जाता है तो विधि पूर्वक और प्रेम से बनाया जाता है। कुमारों को कहा था बाबा ने लास्ट संडे, आपके याद का भोजन और साधारण भोजन में अंतर है, वो प्रसाद वो खाना। हम जो बना रहे हैं वो प्रसाद है, परमात्मा के लिए भोग। तो विशेषता आ गई ना, याद में जो खाना खाते हो या बनाते हो उसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। तो सदा याद रखना कि पुरुषोत्तम विशेष आत्माएं बन गए तो साधारण कर्म कर नहीं सकते। तो ये स्मृति को अंदर पक्का करना है, घोटना है। बाबा ने कहा है, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूं। घोटना भी है, घोटना तो भी चलेगा, वो जाएगा कहीं ना कहीं अंदर। हाँ, रोटना मतलब
बार बार रिपीटेशन,
रटना रटना बोलो रटना। रटना और घोटना। तो एक बात लो बस और उसको पकड़ो। अपने आप को रोज एक दो चीज करनी है, एक तो मुरली में से एक टॉपिक निकालना है और अपने आप को, जैसे कल हमने क्लास में किसी ने कहा, मैंने पूछा आज की मुरली में क्या है, तो उसने कहा कि अब घर जाना है, फटाफट बोल दिया। मैंने कहा 10 कारण बताओ क्यों जाना है, तो चुप। ये है चिंतन, घर जाना है ये तो मुरली में आ गया कल के, वो तो ठीक बात है, पर क्यों जाना है जबरदस्ती? वो तो बाबा ने बोला है मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा, वो दूसरी बात है, पर क्यों जाए? हमको इधर ही अच्छा है। कुछ कारण है हर चीज का, क्या क्यों कैसे, जो भी वाक्य बुरली में आता है क्यों, अपने आप से पूछो क्यों। जैसे छोटा बच्चा पूछता है कितनी उसमें ये टोमेटो लाल क्यों है, ये आकाश नीला क्यों है, पानी गीला है गीला क्यों है, ऐसे प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं होता है। ऐसे हमारे पास प्रश्न हो जो बाबा को भी हिल जाए। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते रहना है बाबा को कि ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों, क्या क्यों, क्या क्यों। ये चिंतन है, ये कोई उस रीति से कंप्लेंट नहीं है। बाबा ने जो कहा ना तुम्हें कंप्लीट बनाना है, कंप्लेंट नहीं, ये प्रश्न है। कोई भी वाक्य मुरली में आता है तुम्हें घर जाना है क्यों, क्या हम इसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं? 10 लाइन 12 लाइन लिखना, मतलब ऐसे पैराग्राफ नहीं लिखना, पॉइंट लिखना हमेशा, तो थोड़ा लिखने में आसानी होती है। पॉइंट 1 2 3 4 अगर हम सोचे एक पैराग्राफ लिखना है वो बहुत मुश्किल काम है। पॉइंट्स, क्यों जाना है घर, खेल पूरा हुआ, टाइम पूरा हुआ, पढ़ाई पूरी हो रही है, आप आए हैं ले जाने के लिए, बहुत सारा चिंतन। हाँ बाबा उसको सुना सुना, उसका सुनापन भरने के लिए कई उत्तर निकल सकते हैं, एक नहीं। और ब्राह्मणों का हर उत्तर राइट होता है, कोई जो भी बता दे वो सब राइट ही आंसर है। हाँ, तो सारी मुरली में से वरदान जो है उसमें से एक पॉइंट निकालो और उसके बारे में सोचो क्यों, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, अपने ही मन से क्यों, ये बोल दिया आज क्यों, वरदान आ गया कुछ ये ऐसा है क्यों, उसमें से एक वरदान में से एक क्यों, स्लोगन से एक क्यों, महावाक्य से एक क्यों, बीच सारी मुरली से कोई एक पॉइंट। उसमें तो असंख्य पॉइंट्स होते हैं, असंख्य बाढ़ होती है, 100 पॉइंट्स। तो एक पॉइंट लेके अपने को सोचने के लिए दो, एक तो ये सोचने के लिए देना, और किसी एक पॉइंट का अलग से जो नशे वाली पॉइंट है, जो हमको ये सामने मुरली ये रखना कि इससे मुझे आज नया क्या प्राप्त करना है, बस ये पॉइंट सुनी हुई है बाजू, ये सुना हुआ है बाजू, ये सुनी हुई है बाजू, ये नहीं है इसको पकड़ो, नया क्या है बस उसको पकड़ना है, और जो नया है उसको लिखो या तो वैसे ही बुद्धि में रखो और उसके बारे में थोड़ा सोचो या किसी को बताओ कि आपको पता है आज बाबा ने ऐसा भी कहा है, आज आपको पता है आज बाबा ने कहा है कि मैं तुमको सुनाने आता हूँ ये सुन लेता है, पर इसके पहले बाबा ने एक बार ऐसा भी कहा था मैं इसको सुनाने आता हूँ तुम सुन लेते हो। जब कॉन्ट्रास्ट हो जाता है दो, तो फिर थोड़ा बुद्धि में याद रहता है हर चीज कंपेरिजन, ये पॉइंट कही है चलो इसके पहले इसी पॉइंट के बारे में आज तक क्या क्या कहा हुआ है, बाबा ने कहा ये गीत कविता है तुमको बिल्कुल सुनना नहीं चाहिए, फिर कहता है अच्छे अच्छे गीत तुम्हारे पास होने चाहिए, सुनो गीत उदास हो जाओ तो गीत सुनना चाहिए, ये भी कहा हुआ है, कभी कहा है मैं जानी जाना नार नहीं हूं, मुझे कुछ पता नहीं तुम्हारा, मैं निराकार सब कुछ जानता हूँ। कॉन्ट्रास्ट उसी के, भगवान एक विरोधी भास का संबंध है दो, मतलब वो एक ऐसा पर्सनैलिटी है कि जो विरोधी चीजें वहां उसका एक हार्मनी है वहां पर, जो कि कहीं नहीं पाई जा सकती है संसार में, एक तरफ संपूर्ण प्रेम एक तरफ संपूर्ण न्यारापन, ऐसा उसका व्यक्तित्व है, एक तरफ मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना मुझे सुना सुना लगता, और दूसरे समय आया और कब गया पता ही नहीं, गया कोई उसको ये नहीं इच्छा नहीं और रुकू तुरंत आउट वही ड्यूएल में भी वही तो कहा ना, समन्वय, एक सुंदर समन्वय विरोधी चीज का, ऐसी एक अद्भुत व्यक्तित्व है, माइंड ऑफ गॉड, भगवान का माइंड क्या है उसके ऊपर सोचना। अच्छा, ओम शांति।